भजले राधे जय श्री राधे, करुणा प्रेम दया मई राधे, करुणा प्रेम दया मई राधे, दयामयी राधे, कृपामयी राधे, भजले राधे जय श्री राधे, भजले राधे जय श्री राधे, करुणा प्रेम दया मई राधे, दया मई राधे, कृपा मई राधे, दया मई राधे, दया मई राधे, कृपा मई राधे, भजले राधे जय श्री राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
सब लोग की आवाजें आ रही है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, नंद यशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल, नंद यशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल,
इतना अच्छा होगा अगर सब लोग जोर से पुकारेंगे,
गोपाल 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 हे गोपाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल 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 हे गोपाल, नंद यशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल,
उदन का आवाज नहीं आ रहा,
गोविंदा गोपाला
मुरली मनोहर नंद लाला सब लोग पुकारो एवरीबॉडी गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मनोहर नंद लाला ए मुरली मनोहर नंद लाला ए मुरली मनोहर गोपाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे प्रभुपाद की मुरली मनोहर श्याम सुंदर कृष्ण भगवान की जय ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम बहुत ही सुंदर स्थान पर आए हैं और शास्त्रों के अनुसार पहाड़ एक भजन के लिए उत्कृष्ट जगह बताई गई है। जंगल यानी वन उपवन बगीचा नदी का किनारा समुद्र का किनारा जलाशय का किनारा भगवान विष्णु का मंदिर और पहाड़ की चोटी ये सब स्थान भगवान के नाम के भजन के लिए बहुत अनुकूल बताए गए हैं। तो अनायास ही हमको भगवान ने ऐसे अनुकूल स्थान पर लाके बिठाया है इसलिए हमने भजन किया कुछ देर के लिए। हरे कृष्ण। तो ये जगह जो है ये भगवान की मुरली की महिमा समझाते हैं बताते हैं। तो एक बार भगवान अपने सखियों को लेकर माताओं जरा थोड़ा सा विश्राम देंगे तो अच्छा रहेगा। रमणीय कुमुद वन में मालती पुष्प के सुंदर वन में उसके बाद आम्र नारंगी नींबुओं के वन में फिर अनार और बादाम के विपिन में कदम बेल और कुटज के कानन में बरगद कटहल पीपल के वन में तुलसी कोविदार केतकी करील यानी कि टेटी बकुल मंदार के वन में विहार करते हुए श्याम सुंदर गोपांगनाओं के साथ काम्यवन पहुँचे। काम्यवन पहुँचते ही वो इस पहाड़ी पर चढ़कर आए जहाँ जिस पहाड़ी पर आप भी चढ़कर आए। उस समय सीढ़ियाँ नहीं थी अभी सीढ़ियाँ बनाई गई आप। तो जब यहाँ पर आए तो बलदेव के साथ में खड़े हो गए पहाड़ की चोटी पर। आकाश में बादल छा गए मंद मंद शीतल हवा बहने लगी। आकाश के बादल मंद मंद मधुर मधुर सुमोहक गर्जना करने लगी जो कान के लिए बहुत पसंद था और शीतल शीतल मुलायम मुलायम छिड़काव भी करने लगी पानी के छींटे गिराने लगी। उस समय ऐसे वर्णन आता है कि भगवान वैजयंती माला पहनकर कानों में कुंडल पहनकर मोर मुकुट धारण करके खड़े थे। तो मुकुट वैजयंती माला जो है वो ऐसे हवा से उड़ने लगी और ऐसे उड़ने लगी कि जाकर कान के कुंडल में उलझ गई। उस समय राधा रानी को भगवान ने पर्वत के नीचे देखा। उनको देखकर उनको बहुत हर्ष हुआ, आनंद हुआ, उत्साह मिला और उन्होंने अपनी बंसी बजाई। बंसी जब बजाई तो सारा वातावरण जो है वो एकदम हर्षोल्लासित हो गया। मंद मंद मधु गुर्जत मेघ, गोपियाँ एकदम आनंद से विभोर हो गई और जैसे बेहोश सी हो गई। सारे देवतागण आकाश में इकट्ठा हो गए, गंधर्व किन्नर यक्ष किम पुरुष सब प्रकार के विद्याधर चारण जितने भी देवता हैं सब लोग आकाश में इकट्ठा हो गए अपने विमान में और अपने वाद्य बजाने लगे, नृत्य करने लगे। उस समय सभी गोपियों की ऐसी अवस्था हो गई जैसे कामदेव के बाणों से विद्ध हो गए हो। सभी देवताओं की जो माताएं थी, जो देवताएं थी, देवी देवांगनाएं, वो सब काम भावना से पीड़ित हो गई, उनके वस्त्र ढीले हो गए। चार प्रकार के जो जीव होते हैं जैसे कि जलचर यानी कि पानी वाले, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर रहने वाले प्राणी और चरने वाले सर्प, सर्प योनि के लोग, ये चारों प्रकार के जीव मोहित हो गए। इसके साथ में जो स्थावर जीव हैं यानी कि यहाँ पर तो ब्रज में सब चेतन है, हर एक वस्तु जीवित है, सजीव है, तो चेतन और अचेतन सभी जीव भाव विभोर हो गए ऐसा वर्णन आता है। उसके बाद में नदी यानी कि छोटा प्रवाह और नद यानी बड़ा प्रवाह, नदी और नद दोनों के पानी बहने बंद हो गए, स्थिर हो गए। जैसे कि एक विकार होता है अष्ट विकार में से, स्तंभ विकार कहते हैं उसको, गेटिंग स्टंड। और इस विकार के वजह से पानी जो है वो एक जगह स्थिर हो गया। और उसके बाद में जिस पर्वत पर खड़े होकर भगवान मुरली बजा रहे थे वो पर्वत पिघलने लगा और आसपास के सारे पत्थर पिघलने लगे और इसके वजह से सुंदर वातावरण जो प्रकृति ने निर्माण किया था, सब जीव भाव विभोर अवस्था में हैं। ऐसी सुंदर अवस्था में जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर चरण चिन्ह निर्माण हो गए भगवान के। जैसे भगवान मुरली बजा रहे थे तो उस समय एक गाय भाग भाग के आई और अपना कान उठाकर, आँखें उठाकर, पूंछ उठाकर भगवान को देखने लगी और एकदम भाव विभोर होकर वो भी स्तंभित हो गई, यानी आई रह गया। हाँ, उस प्रकार से जब ये पत्थर पिघल रहा था और वहाँ पर गाय आ गई तो गाय का खुर भी वहाँ पर आया, उसका भी चिन्ह आया। भगवान कृष्ण लकुटी लेकर खड़े हो गए थे, उसका चिन्ह भी आया। इस प्रकार से सुंदर चरण चिन्ह उत्पन्न हो गया। जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भगवान मुरली बजाते हैं तो वो एकमात्र ऐसी गतिविधि है जिससे पत्थर पिघल जाते हैं। तो उस समय ये जो गर्ग संहिता में वर्णन आता है इसका, ये जो मुरली भगवान की बजी इसकी ध्वनि इतनी दिव्य थी कि वो सारे ब्रह्मांड के सारे भौतिक आवरणों को काट कर आगे 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 बढ़ती गई। सबसे पहले तो वो देवताओं के लोकों में गई ध्वनि, सब देवता जैसे पागल जैसे हो गए, उनको पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, लेकिन अनजान आनंद की लहरें उमड़ रही थी उनके जीवन में। फिर ब्रह्मा लोक तक पहुंची आवाज़, ब्रह्मा भी चारों मुख लेकर ऐसे डोलने लगे। फिर ब्रह्मांड का आवरण पार करके ये बाकी सब ब्रह्मांडों के पास गई, वहाँ के सब देवता लोग भाव विभोर हो गए। फिर ब्रह्मांड जो है वो क्रॉस करके ये वहाँ गर्भोदकशायी विष्णु जो शेषशायी विराजमान हैं और शेषनाग उनको शैया दे रहे हैं, लक्ष्मी देवी चरण दबा रही हैं, लक्ष्मी देवी चरण दबाना ऐसे छोड़ देती है और मग्न होकर वो आवाज़ सुनने लगती है। विष्णु भगवान भी धीरे धीरे डोलते हुए, उनके पीछे शेषनाग का फन डोलते हुए वो आवाज़ सुनते हैं। उसके बाद वो ब्रह्मांड का पूरा कवरिंग क्रॉस करके ये आवाज़ विरजा नदी का, मतलब जहाँ पर महाविष्णु लेटे हुए हैं कारण सागर में, जहाँ पर उनके त्वचा के छेद में से बीज रूप ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, वो महानिद्रा वाले, योग निद्रा वाले महाविष्णु जग जाते हैं, आंखें खोलते हैं और भाव विभोर होकर मुरली की आवाज़ सुनते हैं। और वहाँ से आवाज़ का वर्णन किया है कि वो विरजा नदी को क्रॉस करके ब्रह्म ज्योति में पहुँचती हैं, सारे वैकुंठों में पहुँचती हैं जहाँ विष्णु भगवान विराजमान हैं, और वहाँ से गौलोक वृंदावन में पहुँचती हैं। ऐसी मुरली की आवाज़, दिव्य आवाज़ यहाँ से उत्पन्न हुई, तो सारे विश्व को व्याप्त करके सब चराचर जीवों को आनंद से सिंचित करती है। तो कुछ मुरली का वो दे दो वर्णन है, भगवान की जो मुरली है वो बहुत अद्भुत चीज़ है। सभी गोपियाँ या हमेशा आश्चर्य करती है कि कैसे ये जो पृथ्वी की पुत्री है बांस, उसकी बनी हुई मुरली का भाग्य क्या है। हमेशा भगवान के अधरों को चिपकी हुई रहती है और दिन दहाड़े उनके ओठों को चूमती रहती है। तो मुरली के तीन प्रकार हैं। एक जो उसको कहते हैं वेणु, वो 6 इंच की होती है। दूसरी होती है एक है ना कोई बात इसको बोल रहे हैं। तीन प्रकार की मुरलियाँ होती हैं, एक होती है वेणु, एक होती है मुरली और एक होती है बांसुरी। तो एक 6 इंच की होती है, एक 10 इंच की होती है, एक 15 इंच की होती है और हर एक मुरली से 8 स्वर निकलते हैं। किस किस में 6 छेद होते हैं, किस में 10 होते हैं, किस में 15 होते हैं। तो ये 8 स्वरों में से जब एक एक स्वर निकलता है तो क्या क्या परिणाम होता है, इसका वर्णन शास्त्र में दिया गया है। जब पहली धुन बजती है तो ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं का ध्यान भंग हो जाता है, वो तो सब कुछ भूल जाते हैं, कन्फ्यूज को क्या बोलते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि ये कौन से प्रकार का स्वर और ताल है। शिवजी महाराज अपना डमरू बजाना चालू करते हैं, इंद्र रोना शुरू करते हैं, ब्रह्मा जी एकदम भाव विभोर होकर जैसे कि सम्मोहित होकर बैठते हैं अपने कमल में और उनके जो अश्रु हैं वहाँ से निकलकर श्री वृंदावन में गिरते हैं। अनंत शेष यहाँ से वहाँ भाव विभोर होकर झूलने लगते हैं। जब दूसरी धुन बजती है मुरली की तो यमुना नदी उल्टी बहने लगती है, गंगा नदी का यमुना नदी का पानी उल्टी दिशा में बहने लगता है, या तो स्थिर हो जाता है या तो भंवर में घूमने लगता है। जब तीसरी ध्वनि बजती है तो चंद्र जो है और सूर्य जो है अपनी कक्षा में चलना बंद कर देते हैं, अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं ना हमेशा, वो ऑलवेज मूविंग, तो रुक जाते हैं। चौथी धुन जब बजती है तो सब गायें जो हैं वो भगवान के पास दौड़ के आती हैं। इसकी लीला जो है वो 13 कदम पे है, 13 कदम पे भगवान चौथी धुन बजाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको सारी गायों को शाम को वापस बुलाना होता है। तब वो जो चौथी धुन बजाते हैं तो वो धुन में हर एक गाय को अपना नाम सुनाई पड़ता है, मानो मुरली के द्वारा भगवान अपनी गायों को नाम से पुकार रहे हैं। हर एक व्यक्ति को केवल उनका ही नाम सुनाई पड़ रहा है मुरली के माध्यम से। इस तरह सारी गायें भाग भाग के आती है और स्थिर होकर कान ऊपर किए हुए भगवान के मूर्ति को दर्शन करते हैं जो मुरली बजा रही है, मुरली की धुन को सुनते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर वर्णन शास्त्र में आया है, जो गायें जो हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके मुंह में घास है तो वो घास चबाना बंद कर देती है, घास उनके मुंह से गिरने लगता है। उनके बच्चे माताओं के थन से दूध पी रहे हैं तो वो उनके मुंह में माता का आंचल है लेकिन वो उसको खींचना बंद कर देते हैं, तो कुछ दूध मुंह में है और मुंह खुला हुआ है तो वो जो दूध है वो मुंह से नीचे ज़मीन पर टकर रहा है और ज़मीन के जो घास है वो गाय का बछड़े का महाप्रसाद बड़े आनंद से स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा वर्णन भागवत ने दिया है। फिर पांचवी धुन जब बजती है तो सारी गोपियां जो है वो भाव विभोर होकर सब कुछ छोड़कर उस मुरली की तान के पीछे भागने लगते हैं। छठवीं धुन जो है वो शरद ऋतु को आमंत्रित करती है। ऋतु कोई भी हो अगर वो मुरली बजती है तो शरद ऋतु का वातावरण निर्माण होता है और छठी धुन से पत्थर पिघलने लगते हैं। तो भगवान ने जब यहाँ पर मुरली बजाया तो छठी धुन बजाई होगी क्योंकि पत्थर पिघल गया ना, हरे कृष्ण। सातवीं धुन जब बजती है तो 6 ऋतु हैं वो अपना अपना जो बेस्ट सिचुएशन है वो सब लेकर वहाँ पधारते हैं। 6 ऋतुओं का जो सबसे श्रेष्ठ वातावरण है वो अपने अपना वातावरण लेकर यहाँ पर प्रकट करते हैं और दक्षिण दिशा से हवा खुशबू लेकर, फूलों की सुंदर खुशबू लेकर मंद मंद शीतल शीतल बहते हुए भगवान को आनंद देने के लिए यहाँ पर आ जाती है। और 8वीं धुन किसके लिए है, किसको पता है? आठवें दिन डेडिकेटेड है ओनली फॉर वन पर्सन राधा रानी। जब आंजनौक में उनका मिलने का तय हुआ था और राधा रानी को आने को देर हुई थी तो कृष्ण भगवान ने यही धुन भजाई थी जो केवल राधा को सुनाई पड़ी और एकदम वो उत्कंठित हो गई। आठवीं धुन जो राधा रानी सुनती है तो वो सब कुछ भूल जाती है और भगवान की मुरली की आवाज़ की ओर भागने लगती है। जैसे कि तूफान हो कोई भाव भरा तूफान मुरली की आवाज़ के पीछे तूफान की तरह भागते हुए चले जाती है। अपना काजल पैरों पर लगाती है महावर जो आँखों में लगाती है, कंठहार कमर में पहनती है, गुंगू और नुपुर हाथ में पहनती है और लहंगा ऊपर पहनती है और फरिया नीचे पहनती है। क्या करें, मुरली की धुनी ऐसी है, सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सब पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, सत सबद विवेक बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। अभी ब्रजविलास, तव, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भागवतम, उज्ज्वल नीलमणि, इसमें सब मुरली का गौरव दिया गया है। गोपियाँ नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति श्याम सुंदर में कहती हैं राधा रानी को कि इस मुरली की वजह से तुम्हारा सतीत्व नष्ट हो गया है, यू हैव लॉस्ट योर चैस्टिटी। उज्ज्वल नीलमणि में वृंदा देवी कहती है कि मुरली की धुन के आवाज़ से ध्रुम यानी कि पेड़ वृक्ष और वेली या आनंद से उनको बाहर आती है, कोयल भाव विभोर होकर गाने लगती है और सब लोग इस मुरली के तूफान में डूब जाते हैं। वो वृंदा देवी कहती है कि मुरली एक सुंदर हवा के झोंके की तरह है जो गोपियों के और राधा रानी के, चंद्रमुखी राधा रानी के प्रेम की ज्वाला को हवा देते हैं। मुरली ऐसा वज्र जैसी है जो राधा रानी का जो संयम है, शांति का संयम, उसको तोड़ देती है। वज्र के समान, जैसे पहाड़ को वज्र तोड़ देता है, वैसे पहाड़ जैसा जो राधा रानी का संयम है उसको ये वज्र जो है तोड़ देता है। एनीवेज, बहुत सारा वर्णन है। ऐसा कहते हैं कि राधा रानी जब रूठ जाती है तो गोपियों द्वारा किया हुआ स्तुति उनको मना नहीं सकती है। गोपियों द्वारा स्तुति और लांगुल चालन जो करते हैं गोपियां, वो उनको रूठना जो है मना नहीं सकती है। हास्य विनोद गौरव ये सब कुछ करने के बाद भी वो रूठना छोड़ नहीं देती है। अगर कृष्ण भगवान स्वयं भी उनके चरणों में गिर जाए तो भी वो नहीं मानती है। और कृष्ण भगवान के लिए अगर कृष्ण के लिए कोई बहुत गलत शब्द उच्चारण करता है उनको रिझाने के लिए तो भी वो नहीं मानती है। लेकिन कब, जब केवल कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं तो राधा रानी का क्रोध जो है, मान जो है, वो दूर भाग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुरली बजाने के बाद में कृष्ण भगवान नंदगांव में और बरसाना में चले गए, पहाड़ी के नीचे रास किया। उसके बाद में गोपियाँ रास में थोड़ी गर्विष्ठ हो गई तो भगवान राधा रानी को लेकर अदृश्य हो गए। गोपियाँ रोती रोती यहाँ पर आई उसके बाद में, और भगवान के चरण चिन्ह को देखकर उनको बड़ा विरह का अनुभव हुआ। उन्होंने चरण चिन्ह का पूजा किया, उसकी स्तुति की, उसका दर्शन किया, क्योंकि उनके सामने ही चरण चिन्ह प्रकट हुआ था, फिर रास हुआ था, फिर अंतर्धान हो गए, तो फिर यहीं आकर उन्होंने चरण का दर्शन किया। उसके बाद जब ये भगवान गोपियाँ यहाँ पर पूजन कर रही थी तो सभी गोपियाँ यहाँ पर थी और भगवान राधा रानी को लेकर पहले संकेत गए, वहाँ पर श्रृंगार करके भद्र बन गए, फिर खदीर बन गए, फिर बेल बन गए, फिर कोकिला बन गए। कोकिला वन में भगवान अदृश्य हो गए। उसका कारण ये था कि राधा रानी बहुत थक गई थी अकेले चलते चलते, तो राधा रानी को भगवान ने कहा कि गोपियाँ पुकार के पीछे से आ रही हैं, हमको बहुत तेज चलना चाहिए। तो भगवान को राधा रानी कहा मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं चल नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर थक गई हो तो मुझे कंधे पर चढ़ जाओ। और वो झुक जाते हैं, जैसे राधा रानी उनके कंधे पर चढ़ने के लिए आती हैं तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं। फिर गोपियाँ वहाँ पर आती हैं कोकिला वन में, राधा रानी रोती रहती है, पुकारती रहती है, उनकी पुकार की आवाज़ सुनकर गोपियाँ वहाँ पहुँचती हैं। तब राधा रानी अपना भाग्य का वर्णन करती है कि मुझे कृष्ण भगवान ने कैसे अकेले के लिए संग दिया, यहाँ तक लेके आए, वहाँ वहाँ घुमाए, और फिर मैं थोड़ा गर्व किया, मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो वो अदृश्य हो गए। फिर गोपियों ने राधा रानी को मनाने के लिए फूलों के मकरंद यानी कि हनी से उनका अभिषेक किया। कस्तूरी चंदन केसर अगुरु इसे राधा रानी को नहलाया और राधा रानी ने अपने भाग्य का वर्णन सब गोपियों को किया। इस प्रकार से ये मुरली जो भगवान की है ये सब ब्रज के सभी लीलाओं का एक प्रधान अंग है। ऐसे कहते हैं कि जब गोपियाँ नृत्य करती हैं जैसे मान मंदिर में जब मोर नृत्य होता है तो सबसे पहले आकाश बादल छाते हैं, हल्की हल्की बौछार होती है, मंद शीतल सुगंधी हवा बहती है, फिर मोर आते हैं, फिर सबसे पहले भगवान मुरली बजाते हैं। ऐसे मुरली बजाते हैं तो गोपियाँ अपना कंगन और पायल उसको बजाना शुरू करती हैं और उसी से सारा म्यूजिक बनता है। आकाश में सारे देवता जो म्यूजिकल देवता है ना, जो यक्ष किम पुरुष गंधर्व किन्नर बहुत एक्सपर्ट है म्यूजिक में, वो हमेशा उनके मन में ये प्रश्न रहता है कि ये ताल और सुर कौन सा है, उसको पकड़ ही नहीं पाते। केवल मुरली कंगन और पायल इनसे बना हुआ म्यूजिक है वो, और चंद्र सरोवर में वही था, बंसीवट पे भी वही था और मान मंदिर में वही बजता है। कभी उनका मूड बने तो फिर वो मृदंग करताल करधनी और संतूर सब लेके आते हैं, लेकिन अक्सर उनका ये नेचुरल म्यूजिक होता है और सबसे म्यूजिक के अंदर प्रवीण होने वाले देवता भी इसको पकड़ नहीं सकते। इस प्रकार से ये मुरली जो है ये गोपीनाथ जी बजाते हैं। जब भक्त जो है मदन मोहन की कृपा से भगवान के चरणों से अपना संबंध पुनर्प्रस्थापित करता है फिर उसको सेवा प्राप्त होती है। फिर गोविंद देव उस सेवा को परिपूर्ण करने में भक्त की मदद करते हैं। गोविंद देव की कृपा से हम अपनी सेवा में परिपूर्णता परफेक्शनेस लाते हैं, परफेक्शन। जब सेवा में भक्त परफेक्ट हो जाता है तो उसे भगवान की मुरली के द्वारा की गई जो पुकार है वो सुनाई पड़ती है और ये पुकार सुनना ही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, क्योंकि भगवान अपनी मुरली अनंत काल से चिरंतन रूप से बजा रहे हैं और पुकार रहे हैं सब जीवों को, ये सब कुछ छोड़ के मेरे धाम में चलो और वहाँ पर दिव्य आनंद का अनुभव लो। यहाँ के सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, दुख देने वाले हैं, क्षणिक हैं, कुछ काल के लिए बनते हैं बाद में टूट जाते हैं। चिरंतन रिश्ता जो जीव को चाहिए वो केवल गौलोक में मुमकिन है, उपलब्ध है, और वहाँ पर जीव को पुकार बुलाने के लिए वो बार बार चिरंतन काल से मुरली बजा रहे हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमारा ध्यान इस दुनिया में कई वस्तुओं के ध्वनि पर टिका हुआ है, माया पुकार रही है, भोग पुकार रहे हैं, यहाँ का धन दौलत, यहाँ का प्रॉपर्टी, यहाँ का रिश्ता नाता, यहाँ की चमचमीली वस्तुएं सब हमको पुकारती हैं और उनकी पुकार हमको बहुत ज़्यादा शोर में सुनाई पड़ती है, बहुत कोलाहल है यहाँ पर, इट्स लॉट ऑफ नॉइज। उसमें ये जो सूक्ष्म ध्वनि है भगवान के पुकार की वो सुनाई नहीं पड़ती है। जब तक सारी ध्वनियाँ हम लोग स्विच ऑफ नहीं करते हैं, अभी अभी मैंने एक कहानी पढ़ी थी, आप थोड़ा सुनिए गौर से उसको, कि वो खेत में किसी की घड़ी गिर गई तो खेत ने उसे बहुत ढूंढी लेकिन उसको मिली नहीं वो खेत, तो वो घड़ी वाले ने बख्शिश जाहिर किया कि कोई भी घड़ी लाके देगा तो मैं उसको बख्शिश दूंगा। बहुत लोग गए खेत में, किसी को नहीं मिली, वापस आए निराश होकर। तो एक लड़का गया रात में, एकदम बीच रात में जब कोई शोर नहीं होता है, और वो केवल ज़मीन पर कान लगा के लेट गया। कुछ देर बाद उसको घड़ी की टिक टिक सुनाई पड़ी, उस दिशा में गया, घड़ी उठाया और मालिक को ला के दिया दूसरे सुबह को और बख्शिश प्राप्त किया। सार का है कहानी का, जब शांति होती है तो सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है, जब मन में कोलाहल होता है तो ऐसी सूक्ष्म ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। तो इसका अपनी दुनिया में अपने जीवन में क्या संबंध है कि बहुत सारे शोर हमारे जीवन में ऑलरेडी चल रहे हैं, इसलिए जो अंदर आत्मा की आवाज़ है, परमात्मा की जो आवाज़ है, पुकार है, उनको सुनाई नहीं पड़ती। जब अपने बलपूर्वक प्रयत्नपूर्वक हम अपनी बाकी आवाज़ों को प्रतिसाद देना बंद करते हैं और उस शोर को स्विच ऑफ कर देते हैं तब जाकर परमात्मा की पुकार हमको सुनाई पड़ सकती है। तो आप मुरली वाले मनोहर कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, आपने हाँ मुरली बजाई और महाविष्णु को भी नींद से उठाया, शेष को भी और गर्भोदक शाही विष्णु को भी हिलाया, तो हमारे कोलाहल को भी बंद कर सकते हैं आप और हमारे हृदय की शांतिपूर्ण अवस्था में आपकी पुकार हम सुनकर आपकी ओर हम आकर्षित हो सकते हैं। यहाँ पर तो स्थावर वस्तु भी भाव विभोर हो गई है, हम तो चेतन जीव हैं, तो कृपा करके हमको भी आपकी पुकार की आवाज़ से भाव विभोर कर दीजिए। सारा हमारा ध्यान जो भौतिक इच्छाओं में फंसा हुआ है उससे हटाकर आपके चरणों में लगा दीजिए, तो हमारा मनुष्य जीवन धन्य है। उसी के लिए मनुष्य जीवन दिया गया है कि भगवान की पुकार को हम सुन सकें और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर सकें। बोल मुरली वाले श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।